संकट के अमेरिका और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए गंभीर और स्थायी परिणाम थे। 2008 और 2009 में लगभग 9 मिलियन नौकरियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक गहरी मंदी में प्रवेश किया, लगभग 6% कार्यबल। दिसंबर 2007 के संकट से पहले मई 2014 में नौकरियों की संख्या चरम पर लौट आई। अमेरिकी परिवारों की इक्विटी में शिखर से लगभग $13 ट्रिलियन 20% की गिरावट आई। 2007 की दूसरी तिमाही में पूर्व संकट 2012 की चौथी तिमाही में ठीक हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में घर की कीमतों में औसतन लगभग 30% की गिरावट आई और अमेरिकी शेयर बाजार में 2009 की शुरुआत में लगभग 50% की गिरावट आई। अकेले सितंबर 2012 में दिसंबर 2007 के स्तर तक बढ़ गए। संकट से उत्पन्न उत्पादन और आय के नुकसान का अनुमान 2007 के सकल घरेलू उत्पाद के कम 40% तक पहुंच जाता है। यूरोप ने भी अपने आर्थिक संकट से जूझना जारी रखा। 2008 और 2012 के बीच 940 बिलियन यूरो में उच्च बेरोजगारी और गंभीर बैंक क्षति का अनुमान लगाया गया। जनवरी 2018 में ऋण पर ब्याज पर विचार करते समय सरकार द्वारा अमेरिकी बेलआउट फंड पूरी तरह से बरामद किया गया था। कुल $626 बिलियन का निवेश किया गया, ऋण दिया गया या विभिन्न बेलआउट उपायों के बाद प्रदान किया गया, जबकि $390 बिलियन ट्रेजरी को वापस कर दिए गए। ट्रेजरी ने बेलआउट ऋणों पर ब्याज में $323 बिलियन की कमाई की थी, जिससे $87 बिलियन का लाभ हुआ। आर्थिक संकटों का सामना करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रचलित कहीं से बाहर तरलता का निर्माण। उप प्रधान बंधक बुलबुले के विस्फोट के बाद 2007-2010, लेकिन कोविड-19 आपातकाल के प्रबंधन के लिए 2020 से 2021 भी अनिवार्य रूप से बचतकर्ताओं द्वारा क्रय शक्ति में कमी की ओर जाता है, जो कि सामान्य अवधियों में स्वयं बैंकों द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक गति से उनकी तरल बचत की खर्च क्षमता से कम हो जाते हैं। इन अवधियों में लोगों को आवश्यक रूप से मुद्रास्फीति से बचाने वाली संपत्ति खरीदकर अपनी पूंजी की क्रय शक्ति को संरक्षित करना चाहिए।